श्रोताओ नमस्कार। हमेशा की तरह आपका मनपसंद बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी पहला थिस्सलुनीकियों नामक पत्रिका गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओ हम विश्वास करते हैं कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने इस बाइबल अध्ययन को सुने और जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रस्तुत है आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए आनंदित हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल के नए नियम में से पहला थिस्सलुनीकियों की पत्रिका अध्ययन कर रहे हैं, जिसे पौलुस ने लिखा है। हमने प्रस्तावना में देखा था कि पौलुस की सेवा के तीन पक्ष थे, माँ का, पिता का और भाई का। अब हम उसमें से माँ का पक्ष देखेंगे कि वह कैसे उन्हें ढाड़स बंधाता है। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आपके जीवित वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हर एक भाई बहन जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, तनाव और दबाव में हैं, आर्थिक परेशानियों में हैं। आप उन्हें अपनी शांति दें, उनकी सहायता करें। आज के अध्ययन के द्वारा आप उनसे बोले और बातचीत करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। वह उनके लिए एक माँ मुर्गी के समान था। यह थिस्सलुनीके के कलीसिया के साथ उसके व्यवहारिक संबंधों की अभिव्यक्ति है। मैं तुम्हारे लिए बालकों का पालन पोषण करने वाली माता के समान, अर्थात एक माँ मुर्गी के समान था। ओह, पौलुस की उदारता को देखें। थिस्सलुनीके की कलीसिया के साथ एक स्त्री की सी कोमलता का व्यवहार करता है। प्रभु यीशु ने यरूशलेम के संबंध में भी कहा था, मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय उसके 37 पद में, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद् वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र में प्रभु यीशु अपने विषय में अनेक उपमाएं देता है। वह स्वयं को अच्छा चरवाहा कहता है, ऐसा चरवाहा जो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। वह अपनी भेड़ों की रक्षा करता है और एक दिन वह उन सब को एक वृंद में, एक झुंड में एकत्र करेगा, जहां वे उसकी उपस्थिति में सुरक्षित रहेंगी। वह बच्चों को संभालने वाली मुर्गी भी स्वयं को कहता है। मेरे मित्रों, मैं ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा हुआ हूं और मुझे स्मरण है कि हम कुड़ुक मुर्गी को अंडों पर बैठाते थे और शीघ्र ही उसके पास चूजों का एक समूह होता था। वह को 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 करती हुई सब जगह घूमती रहती थी, क्योंकि हमारे पास दरबा नहीं था। वह मुर्गी अपने बच्चों को लेकर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में घूमती रहती थी और फिर उन्हें को 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 करती घर लौटा ले आती थी, क्योंकि वर्षा आरंभ हो जाती थी। यदि वे घर पहुंचने में सफल नहीं होते तो वह उन्हें अपने पंखों में छिपाकर उनकी रक्षा करती थी। वर्षा का पानी उसके पंखों पर से बह जाता और बच्चे उसके पंखों के नीचे सुरक्षित रहते थे। प्रभु यीशु कितनी बार हमसे भी कहता है, मेरे पंखों के नीचे आ जाओ। पौलुस ऐसा ही सेवक था। वह थिस्सलुनीके के विश्वासियों से माँ की ममता निभाता था। वे उसके अति प्रिय जन थे। आज भी ऐसे सेवक हैं। वे महान टीकाकार नहीं होंगे, परंतु वे परमेश्वर का वचन जानते हैं और उसका प्रचार सच्चाई से करते हैं। ऐसे ईश्वर भक्त और अनुभवी प्रभु के दास आवश्यकता में पड़े विश्वासियों का मार्गदर्शन करने योग्य होते हैं। आपको ऐसे प्रभु के दासों के सामने मन की बातें कहने का भय नहीं होता कि वे आपकी सहायता करेंगे या नहीं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। ध्यान दीजिए, शब्द प्रिय, प्रिय अर्थात मन के निकट रहने वाले। थिस्सलुनीके के विश्वासियों के लिए पौलुस के मन में सच्चा प्रेम था और वह उनके लिए अपना जीवन निछावर कर सकता था। यह सब तभी होता है जब किसी से आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं। पौलुस इनसे प्रेम इसलिए करता था क्योंकि ये भी प्रभु के भक्त थे और उस पर विश्वास करते थे। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। यहां फिर से ध्यान दीजिए, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने रात दिन धंधा करके अर्थात मजदूरी मेहनत करके, यह माता का उत्तरदायित्व है। हमने सुना है कि पुरुष का काम दिन चढ़ने से दिन ढलने तक का है, परंतु स्त्री का अर्थात माता का काम कभी पूरा नहीं होता। माता किराए की सेविका नहीं होती है। पौलुस कहता है कि वह घंटों के अनुसार वेतन भोगी सेविका के दृश्य अर्थात उसके समान नहीं था। वह शिशु परिचर नहीं था। वह किसी संगठन का सदस्य भी नहीं था। मेरे मित्रों, क्या आपने कभी किसी माता संगठन के बारे में सुना है जो मांग करता हो कि माता केवल 8 घंटे काम करेगी? क्या आपने कभी सुना है कि समय पूरा होते ही कोई माता अपने रोते हुए शिशु को छोड़कर चली जाएगी या चली गई? हो सकता है कि माताएं कभी कभी ऐसा संगठन बना ले, परंतु एक सच्ची माता कभी भी नहीं चाहेगी। वह दिन रात काम करती है। किसी मिल में 2 लड़कियां काम करती थी। उनमें से एक नौकरी छोड़कर चली गई। वर्षों बाद उनकी भेंट एक दिन सड़क पर हुई। मिल में काम कर रही लड़की ने दूसरे से पूछा, अब आप क्या कर रही हैं? क्या आप अब भी काम कर रही हैं? दूसरे ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा विवाह हो गया है। मेरा पति ही नहीं, एक बालक भी है। मैं उसे दूध पिलाने के लिए सुबह 3 बजे जाग जाती हूँ। उसके बाद मैं सोकर शीघ्र उठती हूँ और अपने पति का नाश्ता एवं दिन का भोजन तैयार करती हूँ। फिर पूरा दिन बच्चे को संभालती हूँ और शाम को पति के लिए रात्रि भोजन तैयार करती हूँ। पहली लड़की ने आश्चर्य से कहा, मुझे स्मरण है कि मिल में काम करते समय आप कैसे घड़ी पर ध्यान रखती थी। 5 बजे की सीटी बजते ही आप बाहर निकल जाती थी। उस युवा माता ने कहा, अब मैं घड़ी नहीं देखती हूँ। यद्यपि मैं कई घंटे काम करती हूँ परंतु वह नौकरी नहीं है। इस लड़की की प्रेरणा प्रेम था। जी हाँ, उसके लिए वह नौकरी करना नहीं था, वह अपना बच्चा था। पौलुस ठीक यही बात यहाँ पर हमें बता रहा है। वह उन विश्वासियों से प्रेम करता था, वह दिन रात उनके लिए परिश्रम करता था, क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था। मेरे मित्रों, जिस कलीसिया में मैं जाता हूँ वहाँ के एक सदस्य ने मुझे कहा कि मैं किसी से भेंट करने जाऊँ, मुझे खर्चा दिया जाएगा। मैंने उससे कहा, आप जाकर उससे भेंट करें, क्योंकि आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए आप मुझसे अच्छा काम कर पाएंगे। हमें वेतन पर प्रभु की सेवा नहीं करना है। वह उलझन में पड़ गया और फिर स्वयं ही गया। इसके बाद उसने फिर कभी मुझे ऐसी बात नहीं की। हमें माँ के कोमल स्वभाव में एक दूसरे की सुधि लेना है। पौलुस ने यही किया था। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बार एक माँ जो एक नर्स है और अपने ड्यूटी पर जाती है, और वहाँ पर उसने एक बच्चे को देखा जो एडमिट था अस्पताल में। वह उसके पास गई, उसे प्यार मोहब्बत की, उसे बहुत प्यार के साथ दवा खिलाया, परंतु जैसे ही उसके काम का समय खत्म हुआ वह सब कुछ छोड़कर अपने घर और अपने परिवार और बच्चों में घुल मिल जाती है। वह उस बालक को भूल गई जो अस्पताल में था, परंतु दूसरे दिन फिर वह उसके पास में जाती है और उसी प्रकार का प्यार देती है। फिर समय समाप्त होता है, वापस अपने घर में आ जाती है और उस बालक को भूल जाती है। मेरे मित्रों, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम जिस जगह पर जाते हैं काम के लिए सिर्फ काम करते हैं, परंतु अपना प्रेम अपने परिवार और अपने बच्चे होते हैं, हम उनके लिए समय नहीं देखते, और पौलुस यही काम कर रहा है। हम आगे देखते हैं कि पौलुस की सेवा का पिता पक्ष, अब हमने देखा है माता पक्ष, अब हम देख रहे हैं पिता पक्ष और उसका निर्देशन। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा है। तुम आप ही गवाह हो। पौलुस उस बात की चर्चा कर रहा है जो वे जानते थे कि सच है। देखिए उनके मध्य कैसा व्यवहार करता है, पवित्र। वह परमेश्वर की दृष्टि में सावधानी पूर्वक कर्तव्य निभा रहा था, यही पवित्र जीवन है। धार्मिक, उसने अति सावधानी पूर्वक अपना कर्तव्य निभाया। पौलुस का परमेश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति एक उत्तरदायित्व था, और उसने दोनों ही को बड़े निष्ठा के साथ एवं कर्मठता से निभाया। मैं अनेकों के मुंह से समर्पित विश्वासी शब्द सुनता हूँ। यदि आपको समर्पित विश्वासी होना है तो आपको परमेश्वर के समक्ष पवित्र जीवन जीना होगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर को देखें, घड़ी को नहीं। आप अपने अधिकारियों के सामने ही काम करके उन्हें ना दिखाएं, परंतु आपको हर समय काम करना है, क्योंकि परमेश्वर हर समय देखता है। आराधना में आगे जाना, आंसू बहाना और किसी को आपके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करना आदि से आपका जीवन समर्पित नहीं होगा। जी हाँ, आपका अधिकारी आपके बारे में क्या सोचता है? यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका शिक्षक आपके बारे में क्या सोचता है? यदि आप आलसी हैं तो आपका समर्पित जीवन नहीं है। समर्पित जीवन पवित्र है, जो सदैव परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। हम आगे देखते हैं, निर्दोष अर्थात पौलुस और उसके साथियों पर कोई किसी प्रकार का दोष नहीं लगा सकता था, क्योंकि वे निर्दोष थे। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने उस पर दोष नहीं लगाया, उन्होंने उस पर दोष लगाए परंतु दोष सिद्ध नहीं हुए। मनुष्य आपके बारे में बुरी बुरी बातें कहेगा, परंतु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सुनिश्चित करें कि आपके विरुद्ध उठने वाली बातें सच ना हो। पौलुस और उसके साथियों का जीवन पवित्र था। मेरे मित्रों, पवित्र जीवन ही देखा जाता है, परंतु आपके उद्धार से इसका कोई संबंध नहीं है। आपके आसपास उपस्थित गण जो आपके नजदीकी हैं, उसके लिए इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि वे आपको देख रहे हैं कि आपका जीवन क्या है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस कहता है, तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। उपदेश करते, इसके यूनानी शब्द का अर्थ है एक ऐसा मनुष्य जो आपके साथ हो कि आपकी सहायता करे, आपसे विनती करे और आपको गलतियों का बोध करवाए। यही शब्द पवित्र आत्मा के लिए काम में लिया गया है। आपको स्मरण होगा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 7 से 11 पद में प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा था कि वह पवित्र आत्मा भेजेगा जो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय का बोध करवाएगा। मेरे प्रियो, मैंने हमेशा यही सोचा है कि सुसमाचार पवित्र आत्मा के सामर्थ में नहीं सुनाया जाता है। सुसमाचार प्रचार ऐसा हो कि पवित्र आत्मा मनुष्य को पाप का बोध करवाए। इसका अर्थ है कि वह मनुष्य को पाप, धार्मिकता और न्याय का बोध करवाए। सुसमाचार के संदेश में ये तीनों बातें होती है, और जब तक मनुष्य इस बात को नहीं समझ जाता कि वह पापी है तो क्यों कर वह परमेश्वर की ओर फिरेगा। आगे हम देखते हैं शांति देते, इसका अर्थ वह नहीं जो आज हम समझते हैं। हमने प्रेरित के माता पक्ष में इसका अर्थ देखा था। यहां इस शब्द का अर्थ है किसी को प्रेरित करना। पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया से प्रायः यही कहता रहा है कि वह उनसे विनती करता है। इसी प्रकार आज भी सुसमाचार प्रचार किया जाना चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। तब हम देखेंगे समझाते, इसमें गंभीरता का अंश है, इसमें अनुशासन की आवश्यकता है। यह एक ओजस्वी, ठोस और बलशाली शब्द है। मुझे खेद है कि हम आज अपने प्रचार मंच पर भीरू प्रचार सुनते हैं, धीमी प्रचार सुनते हैं। आज का चलन यह है कि एक छोटे से प्रचारक द्वारा एक छोटा सा उपदेश सुना दे। ऐसे उपदेशों में आपातकालीन स्थिति नहीं होती है। किसी ने मुक्त विचारक कलीसिया की आराधनालयों में परिभाषा देकर इस प्रकार से कहा, एक दब्बू प्रचारक एक दब्बू कलीसिया में प्रचार करके उन्हें और अधिक दब्बू बनने की प्रेरणा देता है। ओह मेरे मित्रों, यह तो वास्तव में उबाऊ करने वाली बात है। मेरी पत्नी कहती है कि मैं ईस्टर के पर्व पर अपनी दैहिक लालसा पूरी करता हूं क्योंकि मैं मुक्त विचारकों के पुनरुत्थान संबंधित प्रचार समाचार पत्रों को पढ़कर हंसता हूं। उन्हें इस दिन प्रचार करने में समस्या होती है और मैं उनकी इस असुविधा पर हंसता हूं। एक प्रचार का विषय था ईस्टर फूलों का समय है। ओह क्या आप नहीं सोचते कि यह एक सामर्थी उपदेश है? इसमें संदेह नहीं कि ऐसे उपदेश सुनने के कारण ही पवित्र जनों की ऐसी दुर्दशा है क्योंकि उन्हें तो पानी मिलाया हुआ सूप पिलाया जाता है। एक महान प्रचारक ने कभी कहा था, कुछ उपदेशों में तो इतना भी सुसमाचार नहीं होता कि एक बीमार टिड्डे के लिए सूप बन जाए। इसके विपरीत प्रेरित पौलुस की सेवा कैसी महिमामय थी। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। ध्यान दीजिए, योग्य। पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को भी यही लिखा था, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 1 पद में, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चलो। परमेश्वर ने पवित्र जनों को अपने राज्य में आमंत्रित किया है जो सहस्त्र वर्षीय प्रभु राज है और महिमा में अर्थात अनंत राज्य में। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की महान योजना और उद्देश्य का परिदृश्य समझो, अनंत जीवन के प्रकाश में जियो। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। अब यह सुसमाचार प्रचार का दूसरा पक्ष है। वह तो उनसे पहले ही कह चुका था, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1:5 में, हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। सुसमाचार प्रचार इसी प्रकार किया जाना चाहिए। मैं जब किसी प्रचारक की आलोचना सुनता हूं तो आलोचकों से कहना चाहता हूं, यदि किसी प्रचारक का प्रचार सामर्थ्य रूप में सुसमाचार प्रसारण है तो उसे परमेश्वर का वचन मानकर स्वीकार किया जाना आवश्यक है। आप परमेश्वर का वचन कैसे ग्रहण करते हैं? क्या आप उसे परमेश्वर का वचन मानकर ग्रहण करते हैं या आपको सुनकर क्रोध आता है? क्या आपकी गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं? मेरी सेवा के संपूर्ण समय में ऐसा ही हुआ है कि 2 मेरे प्रचार के बाद एक मनुष्य मेरे पास आया और पूछा कि क्या प्रचार करते समय मेरे मन में उसका विचार था। सच तो यह है कि मैं जानता भी नहीं था कि वे वहां उपस्थित थे। वे अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लगे थे, जो उचित मानने योग्य नहीं था। यहां मुख्य बात तो यह है कि वे परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन नहीं मानते थे। मेरे मित्रों, वचन का प्रचार ऐसा हो कि वह परमेश्वर का वचन है और ग्रहण भी ऐसे ही किया जाए कि वह परमेश्वर का वचन है। और मेरे प्रियो, यदि आप वचन को इस रूप में ग्रहण करेंगे तो वह आप में कार्य कर पाएगा और आपके लिए आशीष का कारण बनेगा, अन्यथा आपका आराधना में उपस्थित होना समय की बर्बादी ही है, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप शरीर में तो उपस्थित हैं, परंतु आप अपने आत्मा में कहीं और हैं। पौलुस इस बात को हमें स्पष्ट करता है कि आप परमेश्वर के वचन को सचमुच में परमेश्वर के वचन के रूप में ग्रहण करें। आज दुख की बात तो यह है कि कई कलीसियाओं में लोग परमेश्वर के वचन को एक आम वचन के रूप में ही लेते हैं। वे इस बात को स्वीकार नहीं करते कि यह परमेश्वर का वचन है, जबकि वे अपने आप को एक मसीही और विश्वासी कहते हैं। मेरे मित्रों, आज इस वचन के प्रकाशन में हम अपने आप को जांच करके देखें कि मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर के वचन के प्रति क्या है। क्या हम सचमुच में परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं? यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मसीह महिमा तेरी महिमा हो, मसीह महिमा हो, सुबह को हो दोपहर को हो संध्या को सारी रात्रि को, मसीह महिमा, मसीह महिमा हो तेरी महिमा हो, मसीह महिमा।
Oh, my God.